संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पर्यायों की अनंतता की चर्चा चल रही है। जितने भी संयोग हैं वो क्षण भंगुर हैं, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि इस संयोग यदि क्षण भंगुर ना होते, यदि ये पलटते ना होते, यदि ये बिखरते ना होते, तो हम कितने सुखी हो जाते। और हमारे सारे दुखों का कारण एकमात्र इन संयोगों का वियोग ही है। ऐसा जो अज्ञान हमारे चित्त में समाया हुआ है, वो ही हमें वास्तव में दुखी कर रहा है। क्योंकि ये जो परिवर्तन है, ये तो वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव कभी दुखकर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पहले जो 12 भावना मेरी खो गई है, उसमें लिखा था कि है अनित्यता वस्तु धर्म, तब क्यों कर दुख कर हो सकती, जब स्वभाव ही दुखमय हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। जब अनित्यता मन परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, तो वो दुख कर क्यों हो सकता है। और जब स्वभाव भी दुख लेने लग जाएगा, जब स्वभाव ही दुख देने लग जाएगा, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति दुनिया में होगी जो हमें सुखी कर सकती है। क्योंकि एक स्वभाव ही है कि जिसके आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। तो हम एक दफे गंभीरता से हम विचार करके देखें कि जो हमारी भावना है कि कोई मरे नहीं, कभी कोई परिवर्तन हो नहीं, यदि वो सफल हो जाती तो क्या हो? कि हो जाए तो क्या होगा, इसकी हम थोड़ी कल्पना करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। और हमारी ये जो आकांक्षा है कि परिवर्तन बंद हो जाए, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्या आप क्या चाहते हैं? क्या बिल्कुल कोई बदलाव हो नहीं, जो जहां है वैसा ही रहे, हमारे सारे संयोग जैसे हैं वैसे बने रहें। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है कोमलचंद जी? कि हमें अनंत काल तक संसार में रहना है। यदि ये पुराने संयोग खत्म नहीं होंगे तो जीव मोक्ष में कैसे जाएगा? क्यों? वर्तमान के समस्त संयोगों के वियोग का नाम तो मोक्ष है, है कि नहीं? इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। यानी वर्तमान की जो स्थिति है, हम उसी स्थिति को कायम रखना चाहते हैं, और उसके बदलाव में हमें दुख महसूस होता है, और यदि कोई बदलाव नहीं हो तो हम सुख शांति महसूस होती है, तो कल्पना करो कि उसका क्या अर्थ हुआ, है ना? अपने ऐसे माताओं बहनों को बहुत देखा होगा कि बुढ़ापे में अत्यंत जर्जर हो गए, चलना फिरना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई है, परिवार वाले कोई ढंग से ध्यान देते नहीं है, कोई इलाज कराता नहीं है, कोई पूछता नहीं है बात, और अपने रोजाना उनके मुंह से दिन में 3 दफा निकलता कि हे भगवान तू मुझे उठा लेता तो बहुत अच्छा था, हे भगवान ये मौत तू कब आएगी, मौत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। क्यों? क्या जब तक ये थोड़ा संयोग ठीक है तब तक ये बात नहीं समझ सकते हैं कि संयोग के वियोग में ही सुख है? क्या जब उस दिन ये हालत हो जाएगी तब उस दिन ये बात समझ में आएगी? क्यों? समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे अनंत काल बात समझो, इस परम सत्य को समझना पड़ेगा। और ऐसे में फिर संयोग का वियोग होना स्थगित हो जाए तो उन बुढ़े बेचारों का क्या होगा जो रोजाना भगवान से 3 दफे प्रार्थना करते हैं? अभी तो वो सोचते हैं साल 2-4 साल में छुटकारा मिल जाएगा, इस देह से, संयोग से, स्त्री पुत्रादिक से, फिर वो अनंत काल तक छुटकारा नहीं मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? ठीक है, जिस ये आप चाहते हैं कि संयोग का वियोग नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, यथास्थिति बनी रहे। क्यों? तो मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, बहुत लंबी बात जाने दो, कि अभी अपने यहां व्याख्यान कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये स्थिति सदा बनी रहे और सुबह तक मैं बोलता रहूं और आप लोग सुनते रहें, राजी हैं? क्यों? अरे 2 मिनट ज्यादा होते हैं तो सब घड़ी देखने लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा हो जाएं तो मुझे घड़ी दिखाने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो मेरे सामने आगे घड़ी रख देते हैं टेबल पर। क्यों? कहां आप चाहते हैं कि जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहे? आप भी तो उसमें परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि जो है जहां का वैसा ही का वैसा रुक जाए और उसमें कोई बदलाव नहीं आए। अपने मन से तो पूछो कि सचमुच हृदय से आकांक्षा है क्या आपकी? भगवान से रोजाना प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं मर ना जाऊं, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, कितना करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं ये कहता हूं कि आपकी भगवान ने सुन ली है, और भगवान कहते हैं बेटा मांग ले जो तेरे को मांगना है वरदान, मैं देने को तेरे को तैयार हूं। क्या महाराज? भगवान मुझे को अमर कर दो, ये कर दूंगा, जैसा है देश है तुझे अमर कर दूंगा। लेकिन तू एक दफे सोच ले अच्छी तरीके से कि एक दफे तू अमर हो जाएगा तो फिर मर नहीं सकता, फिर कल मेरे पास आएगा कि भगवान अब तो मैं इस अमरता से घबरा गया हूं, अब मुझे मरने की व्यवस्था कर दो, तो फिर मेरे हाथ की बात नहीं है। अच्छी तरह सोच ले कि साहब क्या सोचना, सारी जिंदगी से इस अमरता के लिए मैं तरस रहा हूं। क्यों? आप तो मेरे को अमर कर दो। क्या? अच्छा ले, हमें ये फल देते हैं, तू खा लेना, तू अमर हो जाएगा। लेकिन एक बात जरा बैठ शांति से यहां समझ ले, खाने के पहले तू इस अमरता का मतलब समझता है क्या होगा? जब किसी का जवान पुत्र मर जाता है ना, और जब उसकी अर्थी को कंधा लगा करके उसे श्मशान ले जाना पड़ता है, तो वो रोते रोते आंख में आंसू ला करके कहता है कि हे भगवान, मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसके कंधों पर बैठ के श्मशान जाऊंगा, लेकिन आज मुझे इसे कंधा देना पड़ा है, इससे ज्यादा दुख की बात और मेरे लिए क्या होगी? ऐसा आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा। हाँ सुना तो है कि बहुत बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो समझ ले कि तू अमर हो जाएगा तो तुझे अपने बेटे को कंधा देना पड़ेगा, फिर बेटे के बेटे को भी कंधा देना पड़ेगा, फिर बेटे के बेटे को भी कंधा देना पड़ेगा, और 7 पीढ़ियां तेरे कंधे पे ही जाएंगी, और 8वीं सब तेरे देखते देखते तेरी पत्नी, पुत्र, परिवार, भाई, अड़ोसी, पड़ोसी, क्यों खत्म हो जाएंगे? अब बोल, एक बेटे को कंधा देने में यदि इतना दुख होता है तो इसकी कई संतानों को तुझे कंधा देना पड़ेगा तो कितना दुख होगा? बोल, खाना है फल, बनना है अमर। जरा सोच में पड़ गया कि बात तो सच्ची है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये अमर फल मिला है, और मैंने कितने दिनों से ये कामना की थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को ऐसा वरदान मिल जाए कि मैं अमर हो जाऊं, है ना? अब मैं इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं साहब, जो होगा वो देखा जाएगा, जितने लोगों को कंधा देना होगा दे दूंगा, क्यों? लेकिन मैं तो अमर बनूंगा। तो देख, 10-5 बीड़ी बाद मालूम क्या होगा, तेरे से बात करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर 12 वर्ष में वाणी बदल जाती है, 12 कोष पे पानी बदल जाता है और 12 वर्ष में वाणी। हमारे बाप दादे हमारी पुरानी हिंदी राजस्थानी भाषा बोलते थे, कहीं गुजराती बोलते थे, और अब सब हिंदी पे आ गए और हिंदी से फिर अंग्रेजी पे पहुंच गए, और न मालूम तब तक किस भाषा में पहुंच बोल करने लगेंगे। तेरी भाषा भी कोई नहीं समझेगा और तुम अपने नाती पोतों की भाषा भी नहीं समझेगा। ये तो आज भी ऐसा हो गया है। अमेरिका में जाते हैं ना ये बुढ़े लोग अपने बच्चों के पास, तो उनके जो पोता पोती हैं वो इनसे बात नहीं कर सकते, जो उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें वो अमेरिकन अंग्रेजी नहीं आती है और उनको इनकी हिंदी गुजराती नहीं आती है, राजस्थानी नहीं आती है। क्यों सोकाणी जी, देख के आए ना ये खेल? ये तो दादा और पोते की पोजीशन हो गई है। जब 10वीं पीढ़ी बाद आएगी तब शांतिलाल जी क्या होगी, समझना। कि ठीक है नहीं करूंगा बाप, कोई बात नहीं है। कि देख, तेरे को लोग घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि तू इस देश की सबसे ज्यादा बेशकीमती चीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी पुरानी थी, तू एक पुरातत्व की वस्तु बन जाएगा। तो तेरे पे 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी कोई चीज होती है तो पुरातत्व के अधिकार में चली जाती है, चली जाती है ना पुरातत्व के अधिकार में। फिर कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। फिर को तिसको तेरे को किसी म्यूजियम में रख दिया जाएगा, किसी चिड़ियाघर में रख दिया जाएगा, और एक अच्छा बढ़िया पिंजड़ा होगा जिसमें हजारों लोग देखने आएंगे, टिकट लगा दिया जाएगा कि ये 1000 वर्ष पुराना कि 500 वर्ष पुराना आदमी है। क्यों? तू चिड़ियाघर की वस्तु बन के रह जाएगा, सोच ले। साहब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसलिए तो मैं कहता हूं इधर सोच ले। तू जिसको सुख की खान समझ रहा है, अमरता को और मृत्यु को जो तू बड़ा अभिशाप समझ रहा है, तू एक दफा विचार करके तो देख कि मृत्यु अभिशाप है कि वरदान है। तेरी पुरानी पटी टूटी, हजारों बीमारियों की घर सड़ी गली देह को छोड़कर या तो तुम विदेह भगवान बन जाए, इससे तो बहुत बढ़िया कोई दूसरी बात नहीं होती है, और विदेही भगवान ना भी बने तो नई ताजी देह मिल जाए, बोल अच्छी बात है कि बुरी बात है। मेरे फटा फटाया कुर्ता जिंदगी भर पहने रहूं कि एक कुर्ता फेंक दूं और नया कुर्ता मेरे को पहनने को मिल जाए, अच्छी बात क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे गीता में ऐसा लिखा है ना कि जैसे हम पुराने वस्त्र उतार देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ये देह संयोग पुराने वस्त्र हैं और उनको हम उतार के फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, और नए धारण नहीं करे दिगंबर बन जाए तो मोक्ष हो जाएगा, अनंत आनंद आएगा। क्यों? ये पुराने छूट गए और नहीं मिले नए तो क्या होगा? नहीं मिले तो मोक्ष होगा, अनंत सुख हो जाएगा। बोल, ये संयोगों की क्षणभंगुरता, ये संसार का जो परिवर्तन का स्वभाव है, ये तेरे हित में है कि अहित में? वन वे ट्रैफिक है, क्या मतलब? वन वे ट्रैफिक का क्या मतलब है कि ये जीव संसार से मोक्ष में तो जाता है और मोक्ष से संसार में लौट के नहीं आता, है ना वन वे ट्रैफिक? तो एक तरफ ही रास्ता है, वहां से लौट के नहीं आता कोई। क्यों जगन्मल जी, ये बात तो बात पक्की है ना? इसका सीधा सच्चा अर्थ क्या हुआ? संसार माने दुख और मोक्ष माने सुख, ये तो ठीक है ना? तो इसका मतलब है जीव दुखी से सुखी तो होते हैं लेकिन सुखी से दुखी नहीं होते। जो एक बार पूर्ण सुखी हो गए वे दुखी नहीं होते। रागी से वीतरागी तो होते हैं लेकिन वीतरागी से रागी नहीं होते। अल्पज्ञ से सर्वज्ञ तो होते हैं लेकिन सर्वज्ञ से अल्पज्ञ नहीं होते। बोलो, वस्तु का स्वरूप तेरे पक्ष में है, ये परिवर्तन है वो तेरे पक्ष में है कि विरोध में है? तुम क्या बात कर रहा है मानो, तू ऐसी बात कर रहा है कि मुझको परिवर्तन बंद करने की बात कह के ये कर रहा है कि पुराने जमाने में क्या होता था, कोई राजा मर गया तो न उसकी संतान है नहीं और वो किसी को राज तिलक करके गया नहीं, तो अब राजा किसको बनाए? तो किसी आदमी को एक मामला सौंपे तो वो समझता था ये राग द्वेष के निर्णय करेगा, अपने बच्चों को राजा बना देगा, किसी अपने प्रिय आदमी को राजा बना देगा, क्योंकि आदमी को ये राग द्वेष से रहत पक्षपात से रहत कोई मानने को तैयार नहीं था। तो ये समझौता त्रेंचों को सौंप दिया जाता, हम ऐसे ही करते रहे। क्यों हम पे झगड़ा हो जाए? क्रिकेट की टीम पहले कौन खेले, कौन बैटिंग करे, क्यों और कौन बॉलिंग करे, इसका डिसीजन कैसे करें? क्या विश्व के किसी आदमी को हम ऐसा नहीं है जिसे हम सौंप देते और वो वीतराग भाव से निर्णय कर देता कि इंडिया पहले बैटिंग करेगी? क्यों? लेकिन नहीं, हमें नहीं, हमें किसी को स्वीकार नहीं है। आखिरकार हमने एक जड़ सिक्के को सौंप दिया और उसे उछालो, क्यों? और ऊपर गांधी जी आ जाए तो इंडिया खेलेगी, क्यों? यानी आखिर हमने अपना न्याय, इस चेतन ने अपना न्याय नहीं कर पाया तो जड़ सिक्के को सौंपा। राजा ने कौन बने उत्तराधिकारी, न्याय नहीं कर पाया तो किसको सौंप दिया? हाथी को, के हाथी जाएगा और जिसको बैठा लाएगा, क्यों? वो राजा बना दिया जाएगा, होता था ना? क्यों? आज झगड़ा चल रहा था कि कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बने, क्यों? हाथी को भेज देते, जिसको बैठा लाए उसे बना देते, क्यों? अब हम समझदार हो गए ना, तो हाथी को भेजा गया, तो हाथी गया तो एक भिखारी को बैठा के ले आया। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं, क्योंकि सबके मन का निर्णय हो जाए तो सब मान लेते हैं, निर्णय नहीं हो तो कुछ ना कुछ चक्कर लगाकर इस भिखारी को यहां से हटाओ, तो सामने बैठा था इसलिए बैठा लाया हाथी, ये दिखा ही नहीं, तो दूर जाके छिपा दिया 1 किलोमीटर दूर। हाथी गया वहां से ढूंढ ढाड़ के उसी को फिर बैठा लाया और दूर छिपाया, इसी तरह बैठा लाया, तब क्या करें, मानना पड़ा। तो उस भिखारी से कहा, चल भी तुम राजा बन गए हो, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ये बहुत बढ़िया कपड़े आए हैं, गहने आए हैं, ये सब पहन के तुम नहा के राज सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तो चलो भैया, तो गया तो जब भी कपड़े नहाने धोने को कहा तो पुराने कपड़े जो उतारे थे ना वो सब सीमेंट समाट के बांध के एक पोटरी में रख लिए, और तो कुछ था नहीं उसके पास। तुमने इनका क्या करोगे? क्यों? कि तुम्हारा क्या ठिकाना, अभी तुम नहा दोगे सिंहासन पर बैठा रहे और कल भगा दिए वो कपड़े छीन लिए तो क्या पहनूंगा? समझ गया ना? बोले पुराने उन कपड़ों का, इतने बढ़िया नए कपड़े मिल गए, राज सिंहासन मिल गया, तो भी उससे वो पुराने कपड़ों का मुंह नहीं छोड़ा जाता फटे फटे। ये परिवर्तन तो ये बात है, तो संसार छूट के मोक्ष मिलता है, और ये मूर्ख कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पलटना है, भिखारी से राजा बन रहा है, कहता नहीं पलटना है, क्यों? मुझे पलटना पसंद नहीं है। गंभीरता से सोचने की बात है कि नहीं है? सुखी से दुखी, दुखी से सुखी होता है, रागी से वीतरागी बनना है, कहते नहीं पलटना है, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बनना है, कि नहीं पलटना है। ये नहीं पलटेगा तो ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्यों? यदि तू एक पुराने कपड़े नहीं छोड़ेगा तो तेरे को नए कपड़े नहीं मिलेंगे। बोल क्या कहना है? तो भी कहता है सोचूंगा, एक मिनट में हानि करता है। ऐसा भिखारी तो हमने नहीं देखा आज। कौन कहता नहीं देखा? मैं बताता हूं, गली गली में खड़े हैं ऐसे। एक आदमी पार्टी का अध्यक्ष है, क्यों? फिर उसे मुख्यमंत्री बना दिया, तो पार्टी कहती है कि दो पद एक साथ नहीं रह सकता है, क्यों? तो तुम पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दोगे? तो नहीं दूंगा, क्या मुख्यमंत्री भी बनूंगा और पार्टी का अध्यक्ष भी रहूंगा, संविधान बदल दूंगा पार्टी का, है ना? क्यों? बोलो, पार्टी का अध्यक्ष बना काय के लिए था? वो तो एक सीढ़ी थी उस पद पे पहुंचने के लिए, सीढ़ी थी ना, अब वो सीढ़ी से मोह हो गया, सीढ़ी नहीं छोड़ी जाती, स्वर्ग में भी जाना है, मरना भी नहीं है। तो बिना मरे आज तक किसी को स्वर्ग मिला है? क्यों? मैं मरूंगा भी नहीं, स्वर्ग भी जाना है, देवांगनाएं भी चाहिए, ये काली कलूटी कहानी वगैरह छूटती नहीं है, कैसे चलेगा बोलो? ये जो इसकी वृत्ति है कि जो परिस्थिति बन गई है ये उसी में रम जाता है। अपने शास्त्रों में एक कहानी आती है कोमल चंद जी कि एक सम्राट था और वो किसी मुनिराज साधु संत के पास गया और उसने अपना भविष्य पूछा तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी। महाराज मैं कहां जाऊंगा मर के? ये मत पूछे बेटा। कहने महाराज बता दो कि तू सुन नहीं पाएगा, सह नहीं सकता है। क्यों? कहने महाराज तो बता दो, मैं आखिर क्षत्रिय हूं, साधारण आदमी तो हूं नहीं। कहता सुन ले कि तू अपने ही लेटरन में, तू खुद अपनी भिष्ठा में तू कीड़ा पैदा हो गया मर के। क्या? तेरे शरीर के परमाणुओं का संयोग तेरे छोड़ा नहीं जाता ना, तो वे परमाणु तेरे को मिलेंगे जाके, वहीं जाके तुम कीड़ा पैदा हो जाएगा। अब ये तो सुना होगा तो क्या हालत हुई होगी आप समझ लो। वो 7 दिन तो जैसे कटे सो कटे, लेकिन अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा जब मैं मरूं और मैं लेटरन जाऊं तो वो संभाल के रखना मेरी लेटरन, समझे ना आप, और उसमें जो कोई कीड़ा दिखे तो फटाफट उसे मार देना, मैं 1 सेकंड वहां नहीं रहना चाहता। क्या ऐसा हो गया? और जब वो मर गया और उस बेटा गया उस लेटरन को देख करके उसमें कीड़ा को मारने के लिए तो भागा, तो उसी लेटरन के अंदर घुस जाए और छिप जाए। बहुत कोशिश की लेकिन पकड़ने में नहीं आया और लेटरन के अंदर छिप छिप जाता। तो वो महाराज के पास गया, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो सज्ञ तुम्हारे पिताजी ही हैं, लेकिन मुझे आज्ञा दे गए थे मारने की, अब वे खुद क्यों बचते फिर रहे हैं? बेटा के जो जिस पर्याय में पहुंच जाता है वो उसी पर्याय में मगन हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, फिर वो पर्याय से छूटती नहीं है। समझ में ना अभी ना, इसलिए अब तुम छोड़ दो उसे, अब वो वहीं रहेगा। तो ये जो जिस पर्याय में पहुंच गया ऐसी गंदी से गंदी पर्याय में वहीं रम जाता है, फिर उससे बढ़िया से बढ़िया पर्याय मिले तो भी बदलना नहीं चाहता। कैसी विचित्र स्थिति है। इसके लिए तो ये अनित्य असरण भावना का विचार करना जरूरी है। अब देखिए सब कैसी बात करते हो, कहां राजा की पर्याय, कहां लेटरन का कीड़ा, और फिर वहां मर गए कि हो जाए तो कि नहीं। तो मैं पूछता हूं कि वो राजा ही ऐसा नालायक था, हम और आप नहीं है? ये कहां संसार पर्याय और कहां मोक्ष पर्याय? बोल कि मोक्ष पर्याय कितनी महान है, कि वो राजपथ से कम महान है? और ये संसार पर्याय कि लेटरन के कीड़े से ज्यादा गंदगी नहीं है, अनंत दुखदायक नहीं है, लेकिन हम इस पर्याय को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी कीमत में मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पर्यायों का परिवर्तन नहीं होगा तो उसका अर्थ है कि संसार से जीव मोक्ष नहीं जाएगा। फिर भी हम पर्यायों के परिवर्तन को नहीं हो ये चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए आचार्य कहते हैं ये जो तेरी अनादिकालीन इतनी गंदी आदत है, मान्यता है, उस पर एक बार गंभीरता से विचार कर और बार बार इस बात का चिंतन कर कि पर्याय का बदल जाना ही ठीक है, बदल जाती है ये अच्छी बात है, ये हमारे हित में है, इसको देखकर तू रो मत। ये अनित्य भावना में चिंतन करके इस आत्मा को अनित्यता से नित्यता की तरफ ले जाया जाता है, संसार से मोक्ष की तरफ ले जाया जाता है। ऐसा हम चिंतन करेंगे तो हमें भी पर्याय का मोह दूर होगा और स्वभाव की प्राप्ति अवश्य होगी। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।